हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। रात का वक्त था, आयुष्मान और प्रीति खाना खा रहे थे। तभी प्रीति ने सोचते हुए कहा, आयुष्मान जी, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, आप दिल्ली चलेंगे ना? आयुष्मान उसका सवाल सुनकर खाना खाना रोक गया। उसने सर घुमाकर प्रीति को देखा और कुछ परेशानी भरे लहजे में बोला, प्रीति, मैंने अभी बहुत सारी छुट्टियाँ ली हैं, काम का लोड भी ज्यादा है, तो दिल्ली जाना जरा मुश्किल है, और अगर गया तो सुबह निकलना होगा और शाम को वापस आना होगा। पर अगर तुम चाहो तो अपने घर कुछ दिन रुक जाना, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा, और जब आने का मन हो बता देना, लेने भी आ जाऊँगा। आयुष्मान की बात सुनकर प्रीति के चेहरे पर दुख और मायूसी के भाव उभर आए। उसने निगाहें झुका लीं और मायूस सी बोली, वो हमारी शादी में नहीं आए, वो सब लोग मुझे नापसंद करते हैं, मुझसे नफ़रत करते हैं, वो तो कैसे भी करके मुझे उस घर से भगाना चाहते थे, वो खुश होंगे कि उनके सर से ये बला टल गई, वो नहीं रखेंगे मुझे। बात तो करके देखो, अब तो वक्त बीत गया उस बात को, सब ठीक है अब, फिर जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती तो नहीं, इसलिए कोशिश करके देखो, मेरा विश्वास है कि सबने बीती बातों को भुला दिया होगा और खुशी खुशी तुम्हारा स्वागत करेंगे घर में। प्रीति ने बदले में कुछ नहीं कहा, बस निगाहें झुकाते हुए सर हिला दिया और खाना खाने लगी। उस दिन डिनर के वक्त दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई। प्रीति ने खामोशी से डिनर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। आयुष्मान किचन का काम करके दूध लेकर कमरे में पहुंचा तो प्रीति सोती हुई नजर आई। ये देखकर आयुष्मान चौंक गया, पर फिर दूध फ्रिज में रखकर वापस चला आया और प्रीति के बगल में थोड़ी दूरी बनाकर लेट गया। प्रीति की ये खामोशी उसकी चिंता की वजह बन चुकी थी। वो काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा, फिर वो भी नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह प्रीति एकदम नॉर्मल नजर आई। ये देखकर आयुष्मान को सुकून महसूस हुआ। आयुष्मान के ऑफिस जाने के बाद प्रीति ने काफी सोचने और संकोच करने के बाद राजेश को फोन लगा दिया, पर उसकी बुरी किस्मत कि फोन राजेश ने नहीं बल्कि माधुरी ने उठाया, और इससे पहले कि प्रीति हेलो तक कह पाती, माधुरी उस पर भड़क उठी। अब क्यों फोन किया है तूने यहाँ? यहाँ रहते हमारे घर परिवार की इतनी बदनामी करवाई, क्या उससे मन नहीं भरा तेरा? अब और क्या करना रह गया है? जिस घर में जन्मी पली बढ़ी उस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, जिस घर में ब्याह कर गई उस घर को टुकड़ों में तोड़कर बर्बाद कर दिया। अब तो चली गई अपने पति के साथ यहाँ से कम अब तो पीछा छोड़ दे हमारा। एक बात फिर प्रीति कर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए, जिसे सुनकर प्रीति की आंखों में नमी तैर गई। उसने भारी गले से कहा, भाभी, मुझे बस भैया से बात करनी थी। कौन सा भैया, किसका भैया, याद नहीं तुझे? तो खुद अपने उस भगोड़े पति के बच्चे के लिए इस घर को छोड़कर गई थी। उसी पल इस घर के सभी सदस्यों से तेरा रिश्ता भी टूट गया था। तुझे तेरे अपनों से अच्छे वो गैर लोग लग रहे थे ना, तो अब उन्हीं से अपना रिश्ता निभा। इस घर या इस घर के सदस्यों से तेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। तू हमारी कुछ नहीं लगती, और अनजानों और एहसान फरामोशों से रिश्ता निभाने का हमें कोई शौक नहीं। अपने पति के साथ जहाँ है वहीं रहो, और दोबारा यहाँ आने या यहाँ फोन करने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। माधुरी ने एक बार फिर बिना किसी कसूर के प्रीति को सुनाया, और प्रीति खामोशी से उसकी बात सुनती रही। उसका मन उचाट हो गया इन बातों से, चेहरा दर्द और बेबसी से भर उठा, और आंखों में कैद आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गईं। पर माधुरी को कहाँ फर्क पड़ता था प्रीति या उसकी तकलीफ से। उसने उसे जी भर कर कोसा, अपनी बातों से उसके मन को चोट पहुंचाई, और आखिर में धमकाते हुए फोन काट दिया। साथ ही कॉल डिटेल डिलीट करके प्रीति का नंबर भी ब्लॉक कर दिया, ताकि वो दोबारा फोन न कर सके। इन सब बातों से अनजान आयुष्मान ऑफिस में काम में डूबा हुआ था, पर जाने क्यों आज उसका मन कुछ उदास सा था। जैसे तैसे दिन कटा और शाम हो गई। आयुष्मान जल्दी से घर के लिए निकल गया। घर पहुंचा और डोरबेल बजाई, पर प्रीति ने दरवाजा नहीं खोला। 2-3 बार डोरबेल बजाने पर भी जब अंदर से न कोई जवाब आया और न ही दरवाजा खुला, तो आयुष्मान के दिल में किसी अनिष्ट की आशंका से घबराहट होने लगी। उसने अपना फोन निकाला और प्रीति को फोन लगा दिया। रिंग की आवाज अंदर से आ तो रही थी, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। आयुष्मान ने हार कर अपने पास मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोला और ड्राइंग रूम के सोफे पर अपना कोट और बैग पटक कर टाई को ढीला करते हुए किचन में पहुंचा, पर वहां कोई भी नहीं था। आयुष्मान अब परेशान सा अपने कमरे की तरफ पड़ गया। कमरे में कदम रखा तो बेड पर प्रीति खुद में सिमटी हुई लेटी हुई नजर आई। उसकी पीठ आयुष्मान की तरफ थी। उसे लेटे देखकर आयुष्मान को लगा कि शायद वो सो रही है, इसलिए गेट नहीं खोला और फ़ोन नहीं उठाया। उसने गहरी सांस छोड़ी और अपने बेचैन मन को सुकून देने की इच्छा से प्रीति के पास चला आया। जब वो घूमकर प्रीति के पास आया तो उसकी खुली आंखों को देखकर चौंक गया। जाने क्या ही सोच रही थी वो, बस शून्य में अपलक ताके जा रही थी। उसके आंखों के कोर हल्के भीगे हुए थे, पर आंसू शायद सूख चुके थे। चेहरे पर रोज वाली रौनक की जगह गहरी उदासी और दर्द झलक रहा था। आयुष्मान को आज प्रीति में शादी के वक्त वाली प्रीति नजर आ रही थी। उसे इस अवस्था में देखकर आयुष्मान का मन व्याकुल हो गया और उसने परेशान निगाहों से उसे देखते हुए कहा, प्रीति,